जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रातःकाल उपस्थित सभी भक्तों से प्रभुपाद से और हमारे यहाँ का आराध्य देव राधा राधिकरम कृष्ण बलराम गौर मित्र चरणी सुभद्रा श्री प्रभुपाद से और आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि अपने शुद्धिकरण के लिए आप श्री प्रभुपाद जी को गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सकूँ तो इस प्रकार की सेवा कर सकूँ तो आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए और आज हम प्रातःकाल चैतन्य चरितमृत को कुछ बोलने का मैं प्रयास करूँगा। तो अभी जो हमने भजन गाया वैष्णव आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखित, तो ये भजन जो है मैं अपने लिए गाया हूँ कि अपने हृदय में जो अंधकार है इसको दूर करें, इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करें। आज का अनुवाद को करने में समय ज़्यादा हो जाएगा। सामसी चैतन्य सुनेंगे तो बोर्ड पे हमने दो श्लोक लिखा है, एक भाग हम जो है 89 वाला श्लोक हम पढ़ेंगे संस्कृत में है और नीचे जो है प्रयाग है तो हम ऊपर वाला पढ़ेंगे और आज हम जो है 89 और 90 लेंगे। 90 में काफ़ी लंबा तात्पर्य है तो शायद दो बार में समाप्त होगा तो हम जो है उसको दो बार में समाप्त करेंगे तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तात्पर्य और अनुवाद को तो हम लोग इसको उच्चारण करेंगे जो 89 है तो आप लोग बोलिएगा। मन ही भक्त भक्त ही भूता नाम अमृतात्मय कल्पते कृष्ट्वा यदा स्मत्स्नेहा भवति नामदापन महि भक्ता हि भूतानां अमृतात्मय कल्पते दृष्ट्वा यदा स्मत्स्नेहादापन महि भक्ता हि भूतानां अमृतात्मय कल्पते दृष्ट्वा यदा स्मत्स्नेहादापन। महि भक्ति भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्वा मदासीन स्नेहा भवति नामदापन अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्वा मदासीन्म स्नेह भवति नामदापन। माताएं महि भक्ति भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदा मत्स्नेहा भवति नामदापन। तो इसका शब्दार्थ मई मेरी भक्ति भक्ति ही अवश्य भूतानाम सभी जीवों का अमृत तत्वाय अमर होने के लिए कल्पते के निर्माता दृष्टया सौभाग्य से यत क्या आशीत है मत स्नेह मेरे लिए प्रेम भवती नाम आप सबका मत आपन्न मेरे कृपा पाने का साधन। अनुवाद बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा मेरी कृपा प्राप्त करने का साधन मेरी प्रेममयी सेवा है और सौभाग्य से तुम सब उसी में लगी हुई हो जो मैं जो जीव मेरी सेवा करता है वे बैकुंठ जाने और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त करने का पात्र है। तात्पर्य सोचा गया था श्री भागवतम में भागवतम के श्लोक में मानव जीवन की पूर्ति का सार दिया गया है। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है भक्ति तथा अमृत तत्व। मानव जीवन का उद्देश्य शाश्वत जीवन का प्राकृतिक पद प्राप्त करना है। यह शाश्वत जीवन एकमात्र भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर जो श्री चैतन्य चरितमृत के प्रसंग में चल रहा है रामानंद राय महाप्रभु का सम्मान संवाद में, तो रामानंद राय जी जब चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, उसमें धीरे धीरे रामानंद राय जी बताते हुए जो शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य रस में लाकर और उस माधुर्य रस को बहुत जो है खुलासा प्रारंभ कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो माधुर्य रस को जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति ही सर्वोच्च है इसमें बताकर एक भागवतम का श्लोक जो है कोट करते हैं। जब पिछले प्रयास में था परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेम बसे कृष्ण कहे भागवते। तो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति हो सकती है प्रेम के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण इस प्रेम के बस में है तो ये भागवतम में कहा गया है। ये जो है कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम के बस में होते हैं। तो फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बस में कैसे होते हैं तो भगवान की ही उक्ति है। उक्ति जो है भागवतम में उसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो ये बात बता रहे तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण आए थे कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए थे, वहाँ ब्रजवासी लोग पहुँचे हुए थे और सबसे वार्तालाप होने के उपरांत बाद में जो है गोपियों से भगवान का मुलाकात हुआ तो भगवान उनको सांत्वना देने के लिए उनके पास गए और बड़े अच्छे प्रसंग पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि अपने गोपियों को सांत्वना देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं तुम लोगों को छोड़कर इतना दिन बाहर रहा और निश्चित रूप से जो है आप लोग हमसे निश्चित रूप से नाराज होंगे। तो भगवान ने कहा कि आप जो है निश्चित रूप से हमसे नाराज होंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार कहा था कि आप जो है हमारे सबसे प्रिय हो और मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा सांत्वना देते हुए यहाँ सांत्वना दे रहे गोपियों को। तो उसी प्रसंग में भगवान ने ये भी बात कहा, मही भक्ति ही भूता नाम अमृत तो यह कल्पते। तो मैं एकमात्र मेरे भक्ति के द्वारा ही सभी लोग जो है अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अमृत तत्व जो प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीवन का, यही जीवन का शाश्वत जीवन एकमात्र भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। दो शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, भक्ति और अमृत तत्व। तो जैसे हम सदैव जानते हैं वेदों में भी, और कई बार हमने जो है हम भक्तों में मुझसे सुनते हैं, साधु संतों में मुझसे सुनते हैं कि जो जीवन का लक्ष्य क्या है, अमृत तत्व कल्पते। हम इस मृत जगत में हैं, हमें अमृत प्राप्त करना है। तो अमृत का मतलब है कर जो कभी जिसका मृत्यु नहीं होता, अमृत। तो अमृत जैसे स्वर्ग में होता है, और तो देवता लोग उसको अमृत को पीकर बहुत लंबा समय तक के लिए जीवित रहते हैं, अच्छा स्वस्थ रहता, अच्छा शरीर उनका पुष्ट पुष्ट रहता है। तो उसको अमृत कहा गया है। तो और अमृत का मतलब ये भी है कि जो कभी मरण ना होने वाला हो, अर्थात शाश्वत जीवन प्राप्त हो, उसको भी अमृत कहा जाता है। तो लेकिन भक्ति योगियों के लिए और भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं भक्तों के लिए क्या है कि यही है कि हम सबका जीवन का लक्ष्य है, हम जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि अमृत, कोई मरना नहीं चाहता, सब जो जीवित रहना चाहते हैं। तो असली जीवन है कि भगवान का धाम में जाना, भगवान की भक्ति करना। ये सब जो हम जो जीवात्मा है, हमारा जीवन का असली लक्ष्य यही है कि हम जो सब जो है शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं। तो हर कोई तो जीवन, हर कोई अमर बनना चाहता है। श्री सादर अधिकारण भगवान की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव भद्रा महारानी की। तो हर कोई अमर बनना चाहता है। तो हम भी क्यों ना अमर बने। और हमारे लिए अमर का वास्तविक क्या है कि अमर का वास्तविक यही है कि हम परमानेंट भगवान के पास जाएं। इसी के लिए ये आंदोलन है, इसी के लिए आप लोग यहाँ पर अपने जो टाइम समय को यहाँ व्यतीत कर रहे हैं कि हम सब जो है अमर बनना चाहते हैं। तो ये अमर है, ये अमर। और अमर का और भी एक अर्थ होगा, जब जीवात्मा भगवान के धाम जाने की तैयारी करता है और भगवान के धाम में जाता है, वो भी जो है अमरता है। और दूसरा है कि आत्म साक्षात्कार करना, ये भी एक अमरता ही है। और भक्तियों के माध्यम से जो अमरत्व प्राप्त करते हैं, तो भक्ति करते हुए भी, भक्ति करना मतलब आत्म साक्षात्कार करना। जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है कि श्रवण कीर्तन करना। तो श्रवण कीर्तन करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो वो भी भक्ति है। तो उसमें भी जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी यही होता है कि हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये भी जो है अमरत्व है। तो जीवन में अमर तत्व या कल्पते, जो अमर तत्व प्राप्त करना है, तो हम सबको दृढ़ निष्ठ होना चाहिए कि हम सबको अमर तत्व जो अमृत तत्व प्राप्त करना है। यहाँ पर समय को बर्बाद करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, आए हैं अमरत्व प्राप्त करने के लिए। यही सर्वोच्च वस्तु है। और हमारे लिए अमर तत्व क्या है कि सदैव भगवान के धाम जाने की तैयारी करना, भगवान के धाम में नित्य सेवा में नियुक्त होना इसको कहा, यही है जो हमारे लिए अमर तत्व। अगर ये उद्देश्य नहीं है फिर जो हम मृत तत्व है। इस जगत में सभी मर रहे हैं और हम सभी जो है मर रहे हैं। तो भक्ति जीवन में आप पूछ सकते हो कि अभी जो है हम लोग, हम भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन बाहर के संसारिक व्यक्ति का भी जो है मृत्यु होता है, हमारा भी मृत्यु होता है। तो इसका ये अर्थ, ये जो है हमारा लास्ट, हमारे जो शरीर का जो मृत्यु है लास्ट, उसके बाद जो है शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे। तो हम लोग क्या है प्राप्त करना चाहते हैं, अमृत तत्व। और भगवान के वाक्य में कह रहे हैं कि मही भक्ति ही भूत। तो भक्ति के द्वारा ही ये अमृत तत्व प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ दान तपस्या करके स्वर्ग लोक जाकर अमृत प्राप्त करेगा, ये जो है वास्तविक अमृत तत्व नहीं है। भक्ति मही भक्ति ही भूताना अमृत तत्व कल्पते, मेरी भक्ति करके ही कोई जो जीव जो है अमृत तत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए गिफ्ट है, ये हमारे लिए तोहफा है कि भगवान हमें जो क्या वस्तु देना चाहते हैं। और इसमें कह रहे कि भूताना, भूताना मतलब हम सबके लिए आया, भूत का मतलब है जीवा जीव, तो हम सब क्या है भूत है। इसलिए राधा गोविंद महाराज जी इसकी कि श्लोक में जब भूत शब्द आता है तो इसलिए भूत शब्द आता है हम सबके लिए। क्यों आता है भूत शब्द, क्योंकि वास्तविक भूति है हम सब। ये भूत का जैसे व्यवहार होता है वैसे ही हमारा सब व्यवहार है। जैसे भूत जो है किसी के शरीर में भी घुस जाता है, किसी के शरीर में घुस जाएगा अपना कार्य करेगा, वैसे ही हमारा स्वभाव है। हम भी दूसरे के संपत्ति को अपना मानते हैं, दूसरों के पास अच्छी वस्तु है उसी को उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये क्या है, ये जो है वही है भूत का स्वभाव है। और जैसे भूत को जो है कभी कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, भूत को जब जिसको भूत योनि प्राप्त होता है उसको खाने के लिए मिलता नहीं है, इसीलिए बड़ा दुखी रहता है। उसको कहा जाता है जहाँ धोबी जो कपड़ा धोते हैं उस जो है उस जो जल को पीता है बस वही उसको खाने के लिए मिलता है, कुछ नहीं मिलता। वैसे ही असंतुष्ट रहता है, ऐसे ही हम सब जो है असंतुष्ट है, असंतुष्ट जहाँ जो हमारे अंदर जो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, तो इसीलिए हमें जो है भूत कहा गया है। और भूत के पास ये जो है हमारे उसका जो भूत शरीर, भूत का शरीर रहता है, ऐसे शरीर होता नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे अगर हम लोग अज्ञान बस इस शरीर से हम अपने आप को पहचान बना लेते तो ये भी जो क्या है वही है कि इस शरीर को मैं मान लेना, ये भी जो भूत का स्वभाव है। तो इसीलिए जीवात्मा को जो भूत कहा गया है। तो ये जो भूत है वो जो है जो भगवान का भक्त, परम भक्त भगवान का पार्षद बन सकता है, वो अमृत तत्व प्राप्त कर सकता है, इसको सबसे बड़ा जो है जीवन में सुख मिल सकता है। और ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो कह रहे दृष्टया मदासीन मत स्नेह भवती नाम मदापन। कोई व्यक्ति मुझे देखकर और मेरे से स्नेह करके वो जो व्यक्ति जो है भवती नाम वो क्या है मुझे प्राप्त कर जाएगा। तो भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है कि भगवान को देखना और भगवान से स्नेह करना, यही है अमृतत्व, अमृतत्वाय कल्पते। तो हम भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, हम अपने घर में भी भगवान की छवि रखते हैं, भगवान का विग्रह रखते हैं, तो उनसे जो स्नेह रखना चाहिए, उनके लिए हम जो है कुछ लेकर आए, जैसे मंदिर आते तो कुछ फल फूल इत्यादि लेकर आए और भगवान का उत्सव इत्यादि मनाए, ये क्या स्नेह बस है। जब स्नेह हो तो कभी कर पाते। तो भगवान को देखना, भगवान को प्रतिदिन दृष्टया देखना और उनसे स्नेह करना, जो भी हम करें उनको भगवान को अर्पित करते हुए करें, भगवान को अर्पण करना। लेकिन भगवान को अर्पण करें भगवान तो खा तो नहीं जाएंगे, हमें प्राप्त होता, हमें उल्टा हमें ही मिलेगा। तो लेकिन इसलिए कहा गया है कि केवल जब उनको अर्पित करते हुए ग्रहण करें, तो यही भगवान का जो है स्नेह है। जब भगवान जिसको स्नेह करते तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर जाएगा, और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यही है। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को बताया। तो भगवान गोपियों को इसी प्रकार से सांत्वना दे रहे। तो भागवतम के ये 11वें दशम स्कंध के 82 में श्लोक आता है। तो इसमें बड़ा सुंदर तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के टीका को बताते हैं तात्पर्य में। तो भगवान गोपियों से कहते हैं कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, तब गोपियों ने उत्तर दिया, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सर्वाधिक चतुर भगवान श्री कृष्ण को कह रहे, तुम जिस भगवान की दोष दे रहे हो वो भगवान तुम ही हो, विश्व का वो प्राणी इसे जानता है, विश्व का प्राणी जानता है कि आप ही जो है भगवान हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों को, देखो हम सबका एक साथ मिलना और बिछड़ना ये तो सब भगवान के हाथ में ही होता है, इसमें सांत्वना दिए थे। तो गोपियां जो है इस प्रकार से उनको कह रहे हैं, जिन भगवान की बात कह रहे हो वो भगवान तो तुम ही हो, और तुम ही जो हमें छोड़ के चले गए, विश्व का हर प्राणी इसे जानता है, तो भला हम इस तथ्य को अनजाने क्यों बनी रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि यह सच है तो मैं ईश्वर हो सकता हूं, किंतु तो भी मैं तुम्हारा प्रेम व्यापार से पराजित हूं। तो भगवान ने उत्तर क्या उत्तर दिया कि हाँ ये है कि हाँ मैं भगवान हूं, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम व्यापार से मैं पराजित हूं, तुम्हारा सामने जो है मैं तुम सबके सामने जो है मैं हार चुका हूं। इसीलिए डायरेक्ट अपने को ना बताकर कि मेरे द्वारा ही हम सब मिले, मेरे द्वारा ही हम सब बिछड़े, ये बोले थे भगवान का नाम का कह रहे थे। विष्णु तरीका बड़ा सुंदर जो है उत्तर दे रहे हैं। तो इसी के ही जो हम अपने मति के अनुसार और थोड़ा सा इस श्लोक में बताया है। तो आगे जो यहाँ पर आगे का इसको मैं पढ़ता हूँ, तात्पर्य है इसे आप लोग सुन सकते हैं। कृष्ण प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाल अच्छे ये अच्छे भजे कृष्ण तारे भजे तेछे। ते बड़ा सुंदर प्रयार है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा है, हमेशा भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा, भगवान कृष्ण एक बार प्रतिज्ञा कर दिया लेकिन वो हमेशा के लिए प्रतिज्ञा है ये कि जो यह यथा मा प्रपदंते तांस उठाए भजन, जो जैसा मेरा भजन करता है वैसे मैं भी उसका भजन करता हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते इसको सुनेंगे, बड़ा ही जो इसमें हम सबको जीवन में लागू करने के लिए और हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें। तो बड़ा सुंदर तात्पर्य सुनिएगा। यह सोचना बड़ी भूल होगी कि कोई किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से कृष्ण की पूजा कर सकता है और फिर भी उसका कृपा उनकी कृपा रूपी फल प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण को चाहे किसी भी रूप में पूजा किया जाए तो उसका फल जो है प्राप्त, किसी भी रूप में पूजा कर लो फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा निर्णय निपट भौतिकवादी व्यक्तियों का है। ऐसे लोग सामान्यतः यह कहते हैं कि भगवान की पूजा की आप अपनी नई विधि बना सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये बात किसने कहा है। और किसी भी तरह से तरह की पूजा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह सत्य है कि कर्म, ज्ञान, योग तथा तपस्या द्वारा विभिन्न फलों को प्राप्ति के लिए पृथक पृथक विधियां हैं। इसीलिए भौतिकवादी लोग कहते हैं कि उनमें से चाहे जिस विधि को अपना लिया जाए भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी ही। उनका दावा है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जी किस प्रकार की विधि अपनाता है। इस संबंध में एक सामान्य उदाहरण दिया जाता है। यदि कोई किसी निश्चित स्थान को जाना चाहता है तो वह जाने का अनेक मार्ग होते हैं और उनमें से किसी भी एक मार्ग से वह वहां तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह से निपट भौतिकतावादी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने की विभिन्न विधियां हैं। उनका कहना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कल्पना दुर्गा, काली, शिवजी, गणेश, भगवान राम, कृष्ण, विशेष ब्रह्मा या अन्य कुछ भी के रूप में की जा सकती है और जो जिस भी तरह और जिस भी रूप में चाहे भगवान का कीर्तन किया जा सकता है। ऐसे भौतिकतावादियों का दावा है कि क्योंकि अंतर्गत पर सभी नाम तथा रूप एक है अतः उनसे इससे फल एक सा मिलता है। वे यह भी उदाहरण देते हैं कि जिस मनुष्य के कोई नाम हो वो किसी भी एक नाम से पुकारा जाने पर उत्तर देगा। इसलिए उनका कहना है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई काली, दुर्गा, शिव, गणेश या अन्य किसी के नाम का जप करता है तो परिणाम एक सा होगा। ऐसे दावे मानसिक तर्कवादियों तर्क वितरक करने वालों द्वारा किया जाता है और उनके लिए यह निस्संदेह सुहावना होता है, किंतु जो वास्तविक ज्ञानी है वे ऐसे निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे निष्कर्ष शास्त्रों के विरुद्ध है। कम से कम प्रमाणित आचार्य इस निष्कर्ष को तो नहीं स्वीकार करेंगे, कृष्ण ने भगवद्गीता में स्पष्ट कहा है। तो आप सब लोग इस प्रकार जानते हैं कि बाहर के जो टीवी चैनल वगैरह होता है या जो सत्संग जो बहुत सारा जो तथाकथित सत्संग होता है वहाँ पे यही सब शिक्षा दी जाती है। परम भगवान को इसकी शिक्षा नहीं, इसका शिक्षा जो है नहीं दी जाती, क्योंकि अगर इसकी शिक्षा देंगे तो अपना बाजार बंद हो जाएगा। आजकल धर्म के नाम से बाजार काफी चल रहा है। पहले एक बाजार चलाया था बीज किशन ने, उसको भक्तिवीर ठाकुर जी ने पकड़ा, उसका भगवान से भगवत्ता बंद कर दिए। वो अपने आप को जगन्नाथ कह रहा था, उसका बंद कर दिया। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में और एक व्यक्ति आया है, वो अभी अपने आप को बलराम जी कह रहा था, तो उसका भी जो है अभी पकड़ा गया, उसका भी भगवत्ता जो है निकल गया। तो यही सब जो धर्म के नाम से, सत्संग के नाम से हम सब का जो है छल जाते हैं, हम सब से सब जो छल जाते हैं कि चाहे किसी का नाम कर लो एक ही बात है। यही सब सिखाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, भीड़ भी बहुत होती है, बाद में से पकड़ा जाता है। इस तरह से जो हमें तो कोई बता देता था हम पता लग जाता कि हाँ ये चल रहा है बाहर का दुनिया का, लेकिन जो हमें तो देखने वाले पता है कि किस प्रकार जो सारे जो है धर्म भोजनों जो है सब पकड़े जा रहे हैं। तो आज कह रहे कि यंति देवव्रता देवान पितृ यंति पितृव्रता भूतान यंति भूतेज यंति मदा जिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों का पूजा करते हैं पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों के बीच उत्पन्न होंगे और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास रहेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे कि कम से कम इन बातों को चाहे कोई कृष्ण नाम का कीर्तन करे या काली, दुर्गा, गणेश कीर्तन करे, फल जो है एक ही मिल जाएगा। तुम जिससे तुम्हें क्या पसंद है, जो तुम्हें पसंद है तुम उसी नाम को ले लो। लेकिन जीवन में सत्संग करो, सत्संग में सुख मिलता है, सत्संग में जो है जो सारा दुख समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कहकर लेकिन कुछ भी करो लेकिन सत्संग जरूर करो। तो इस प्रकार लोगों कहते हैं, इस प्रकार नास्तिकवाद श्रील प्रभुपाद और भी भगवद गीता में उस व्यक्ति का नाम तो डायरेक्ट नहीं बोले, ऐसे कन्वर्सेशन में बोले हुए हैं, लेकिन जो है समझ ऐसे एक मूर्ख बंगाल का एक मूर्ख जो है ये जो सिद्धांत दिया है कि चाहे कृष्ण की पूजा करो या काली की पूजा करो या दुर्गा की पूजा करो गणेश की पूजा करो, सब एक ही बात है, सब एक ही चीज है। अगर आप सुनेंगे तो उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर और भी कहा गया, कम से कम प्रमाणिक आचार्यगण जो इस बात को स्वीकार नहीं करते, जो वास्तविक भगवदगीता मर्म समझने वाला है इसको स्वीकार नहीं करेगा। भगवदगीता कहता है कि जो जिस व्यक्ति को पूजा करता है वो तो उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे जो इस प्रकार से मेरे स्नेह करने वाला मुझे प्राप्त होगा, मेरे धाम आएगा। और गीता में कहा गया है जो जिसको पूजा करता है उसको प्राप्त होगा, तो हर कोई कैसे भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये जो शास्त्र सिद्धांत विरुद्ध है। तो इस प्रकार जो देवताओं का पूजा करता है, जो परम भगवान को जान नहीं पाता, देवताओं को पूजा करता है, उसके लिए कहा गया है कामस्य ज्ञानम प्रपदंत्यन देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृति नियत स्वया। तो इस प्रकार जो इसको जिसको पता नहीं है कि परम भगवान कृष्ण है, कृष्ण पास जाने से हम जो है शास्त्र जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और सभी देवी देवताओं को कृष्ण को एक मानता है, वो क्या है, वो है कि काम से ज्ञान उसका जो बुद्धि जो है मारी गई है। तो फिर भगवान बताते हैं कि तो अंततः जो देवताओं के पूजक है, जो देवताओं जो देवताओं के पास जाते हैं, जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आते हैं। अंतवंत फलम तेसा तद भवते अल्प मेद श्याम देवान देव यंत मत भक्तो यंती माम अपी। तो मेरे भक्त जो है मेरे पास आते हैं। तो ये जो बता जिस प्रकार जो लोग बताते हैं वो गलत चीज है। भगवत धाम में केवल भक्तों को प्रवेश करने दिया जाता है, देवताओं के पूजक कर्मियों योगियों को अन्य को नहीं। भगवान के धाम में भक्तों में प्रवेश दिया जाता है। जो व्यक्ति स्वर्गीय ग्रह में जाना चाहता है वो अनेक देवताओं की पूजा करता है, और भौतिक प्रकृति प्रसन्न होकर ऐसे भक्तों को वंचित पद प्रदान करती है। भौतिक प्रकृति हर व्यक्ति को अपने स्वभाव प्रदान करती है जिससे वो विविध देवताओं के प्रति श्रद्धा को बढ़ाता है, किंतु भगवद्गीता में कहा गया है कि देवताओं की पूजा उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। काम श्रेष्ठ हत ज्ञान प्रबदन देवता तम तम नियम आस्था प्रकृति नियंत्रस्त हुआ। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुकी है वे देवताओं के शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विधियों का पालन करते हैं। कोई भले ही स्वर्गलोक क्यों न चला जाए किंतु ऐसे वर के परिणाम सीमित होता है। लेकिन आज के समय में जो देवताओं को पूजा भी जो है वो ठीक ढंग से होती नहीं है। अगर देवताओं का पूजा को ठीक ढंग से किया जाए तो रिजल्ट तो बाद में मिलेगा, लेकिन जो आज के समय जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं इससे कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति देवलोक चले जाएगा, इससे भी जो कोई गारंटी नहीं, विधि जो है ठीक नहीं है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने मंदिरों में जब विघ्नों की पूजा के समय निश्चित रूप से कीर्तन करने को कहा गया, तभी जो है हमारी जो पूजा जो है ये कंप्लीट मानी जाएगी। तो सभी पूजाओं में भगवान का नाम जब कीर्तन होता है तो सब कुछ पूजा जो है पूर्णमदः पूर्णमिदं सब पूर्ण हो जाता है। तो जब भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करते हैं तो बताइए जो देवी देवताओं पूजा करते हैं तो उनको क्या रिजल्ट मिल सकता है। इतना आसान नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा करना, बहुत विधि विधान होती है। पहले के समय में जब यज्ञ होता था देवता लोग आते थे तो उनका था आजकल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यदंत ही समय दे सर, इसलिए अच्छा है कि पंच तत्व का चैतन्य महाप्रभु का ही पूजा करें। और चैतन्य महाप्रभु को सबसे सरल पूजा क्या है, केवल उनके सभी के सामने उनका कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, नृत्य करो, यही भगवान की कलयुग में सबसे बड़ी पूजा है। तो बाकी जो है अविधि है, विधि भी ठीक नहीं। तो कोई भले ही स्वर्गलोक क्यों ना चले जाए किंतु ऐसे वर के परिणाम सीमित होता है। कितने राजा निर्ग, युधिष्ठिर महाराज और भी जो जितने भी होते थे, भरत महाराज, जो दूसरे भरत जो पांडव वंश भरत महाराज, ये स्वर्ग में गए, इतना आसान थोड़ा था, तुरंत धक्का मार के बाहर निकाल लेते हैं, उसी समय धक्का में बाहर निकाल लेते हैं। पूरा रिजल्ट देखा जाता है कि कैसे इसका इसने जो है अपने इसका नियम का पालन किया, कैसे इसने राज्य किया, तब जाके मिलता था। राज्य में कोई भ्रष्टाचार होता है तो ऐसे व्यक्ति चले जाए, तो इतना आसान है कि देवलोक भी जाना, सरल है भगवत धाम जाना, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की पूजा करें, चैतन्य महाप्रभु पूजा करें, पंचतत्व पूजा करें, तो भगवत धाम चले जाएंगे आराम से। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा नष्ट होता है। जो लोग देवताओं को पूजते हुए देवताओं के ग्रहों को जाते हैं किंतु मेरे भक्त मेरे धाम पहुंचते हैं। स्वर्गीय लोक के किसी अन्य भौतिक लोक पहुंचने का अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान तथा आनंद का आनंद से युक्त शाश्वत जीवन प्राप्त हो सके। देवताओं का लोक में जाने से मनुष्यों को शाश्वत आनंद और शाश्वत जीवन का सुख जो है वहां मिलने वाला नहीं है, सब जानते हैं। भौतिक जगत के अंत होने पर ये सारे भौतिक उपलब्धियों भी समाप्त हो जाएगी। भगवत गीता में कृष्ण कहने के अनुसार जो लोग कृष्ण की प्रेम भक्ति में रत होते हैं वे ही वैकुंठ लोक में जाते प्रवेश करते हैं कर सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं, अन्य लोग जा नहीं सकते। तो केवल जो है भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ लोक जा सकता है। तो समय भी हो चुका और यहाँ पर तो आगे दो पेज का तात्पर्य के बाद में जब क्लास मान ले सकते तो यही जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे कि भगवान जो कहते भगवान गीता में जो कहा है कि जो जैसे भजन करता है वैसे करता है, तो भजन का मतलब ये कचरा भजन नहीं बनाना चाहिए। भगवान का भजन ठीक है, ब्रह्मति परमात्मा की भगवान की शब्द से भी कोई याद करता है ब्रह्म परमात्मा तो ठीक है वो भगवान के लिए, लेकिन देवी देवता का पूजा करना और भगवान का पूजा करना ये एक है, ये जो है ये निपट भौतिकतावादियों का कहना है। आगे तात्पर्य विवरण बड़ा सुंदर है, फिर असली धर्म क्या है, उसकी असली धर्म क्या है, असली भगवान का भजन क्या है, वो आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएं। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री आधार अधिकार भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री नीताय गौर सुंदर की, ग्रंथ राशि चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी जी की, नीताय गौर प्रमानंदी की।